बात की जरूरत नहीं है। किसान आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका इज्जत क्या है, जो कुछ भी हो आप जानो। किंतु भाई जो भी आपका मजहब है, जो भी आपका इज्जत है, जो भी आपकी फिलोसफी है, उससे आपने अपने को सुंदर बनाया या ये प्रश्न प्रत्येक भाई का प्रश्न है, ये प्रश्न प्रत्येक बहन का प्रश्न है, और ये भाई मेरे वर्तमान का प्रश्न है, आगे किसी का प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी का मजहब गलत है या किसी का अदब इज्जत गलत है, ऐसा मैंने कहने का कहा, तुम जानो तुम्हारा मजहब जाने। लेकिन भाई ये कहने की बात तो आती है सामने कि हमने अपने मजहब को अपने जीवन से, हमने अपनी मान्यता को अपने जीवन से सिद्ध नहीं किया। आप जानते हैं जो चीज जीवन में नहीं रहती वो बिगू नहीं होती, वो बिगू नहीं होती, वो नित्य नहीं होती, और जो चीज जीवन में आ जाती है वो बिगू हो जाती है। क्यों? ये वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य है। कैसे? विचार करते भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, जिसके द्वारा जो चीज विषय की जाती है वो विषय होने वाली वस्तु विषय करने वाली वस्तु से सीमित होती है, उसकी सीमा न होती। इससे क्या सिद्ध हुआ कि इंद्रियों के द्वारा जिस सृष्टि को आप विषय करते हैं वो सृष्टि इंद्रियों के अंत में है, अर्थात इंद्रियां उस अपने विषय से अधिक विभू है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिन इंद्रियों को आप मन के द्वारा विषय करते हैं वो मन इंद्रियों से विभू है, और जिस दिन के संकल्प पर आप बुद्धि के निर्णय करते हैं वो बुद्धि मन से विभू है, और जिसे आप ये कहते हैं कि मेरी बुद्धि, तो आप बुद्धि से विभू। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो चीज आप में आ जाएगी, आप में अर्थात जो चीज आपका जीवन हो जाएगी वो विभू हो जाएगी, वो व्यापक हो जाएगी, वो अविनाशी हो जाएगी, वो नित्य हो जाएगी। आज कारण क्या है? ईश्वर आज हमारे चरण में है, चिंतन में भी है, किंतु जीवन में है। धर्म आज हमारे कथन में है, चिंतन में है, जीवन में नहीं है। राष्ट्रीयता आज हमारे कथन में है, चिंतन में है, जीवन में नहीं है। इसका परिणाम क्या है कि वो बिहू नहीं है। इसलिए ये एक मौलिक जो समस्या है जिसे कि आपको हल करना है, वो तभी हल होगी कि आपका जीवन और आपका दर्शन एक हो, आपका जीवन और आपकी आस्था एक हो, आपका जीवन और आपका निर्णय एक हो, तब आप और हम सुंदर हो सकते हैं। और सुंदर होने से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है। सुंदर समाज का निर्माण किसी विधि से नहीं होता, किसी पद्धति से नहीं होता। सुंदर समाज का निर्माण होता है सुंदर जीवन, और सुंदर जीवन होता है कब? जब हम अपनी दृष्टि से अपने को देखना आरंभ करें, तब होता है। सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ अगली यह है कि जब आप अपनी दृष्टि से अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं, और उस निरीक्षण से जब आप अपने किसी प्रकार का असर पाते हैं, उस असर के त्याग का अर्थ सत्ता कर रहे हैं। असाधन क्या है, अकर्तव्य क्या है, आसक्ति क्या है, और कुछ नहीं है। अपने जीवन में जो असत है उसका जब हम संग करते हैं, तो असत के संग का जो परिणाम होता है उसका इनाम अकर्तव्य है, उसी का नाम असाधन है, और उसी का नाम आसक्ति है। आज हमारी जगह क्या है कि असत का संग रखते हुए सत की चर्चा करते हैं, सत का चिंतन करते हैं, और बल पूर्वक सबको प्राप्त करना चाहते हैं असत का संग करते हुए। परिणाम क्या होता है? भगवत चिंतन करते हैं, विषय चिंतन होता है, आत्म चिंतन करते हैं, देह का चिंतन होता है, और धर्म की धर्म का चिंतन करते हैं और अधर्म हो जाता है। इसलिए भाई किसी भी विधि आत्मक साधन करने से पूर्व इस बात पर विचार कर लो कि हमारे जीवन में हमारा जाना हुआ असाधन क्या है। इस बात को मत देखो कि आपके जीवन में साधन क्या है, साधन क्या है इसके देखने से कोई लाभ नहीं होगा, किंतु इस बात को देखो कि हमारे जीवन में असाधन क्या है। असाधन के देखने से आपके जीवन में एक विधा जागृत होगी और विधा से एक चेतना आएगी और चेतना से आप असाधन के कारण को जान सकते। जिस समय आप असाधन के कारण को जान लेंगे तो कारण के नाश होने से कार्य का नाश हो ही जाता है। अतः असाधन के कारण का कारण के ज्ञान में ही इसका नाश होता है। एक बड़ा भारी सत्य है ये कि असत्य का ज्ञान असत्य की निवृत्ति में हेतु होता है, भूल का ज्ञान भूल की निवृत्ति में हेतु होता है। तो जिस समय हमें असत्य का ज्ञान होगा उसी समय असत्य की निवृत्ति होगी और असत्य की निवृत्ति में ही सत्य की प्राप्ति है, सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य से अभिन्नता है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि एकमात्र अपने जीवन में जो असत है उसी को जानना है। किंतु आज हम ईश्वर के जानने की कोशिश करते हैं, आत्मा के जानने की कोशिश करते हैं और ऐसी बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिनको सचमुच अभी नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते, उन्हें अभी क्यों नहीं जान सकते कि भैया असत को जानते हो उसको तो होते नहीं, यानी असत को जानने का तो हम प्रयास नहीं कर सकते और सबको जानते हैं नहीं जान सकते। हाँ होता क्या है कि असत को न जानने से असत के साथ साथ सब जो भी मानते रहते ये भी मानते हैं कि परमात्मा है और ये भी अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि आसक्ति है जीवन में, लोभ है जीवन में, राग है जीवन में, द्वेष है जीवन में, काम और क्रोध है जीवन में, ये भी अनुभव करते हैं और ये भी मानते रहते हैं परमात्मा है। तो मैं आपसे पूछता ये कोई परमात्मा का मानना हो गया क्या, परमात्मा का मानना हो गया क्या है, नहीं हो गया। इसलिए भाई आज हमें और आपको निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है, हार ये नहीं होना है, किंतु सजग होना है, सावधान होना है और अपनी द्वारा अपने जीवन का ठीक ठीक अध्ययन करना है। जिस समय हम और आप अपने जीवन का ठीक अध्ययन करने लगेंगे आत्मानिए अनाया हरे भाई को हरे बहन को अपने असत का दर्शन हो जाएगा, जो उसके जीवन में असत है उसका दर्शन हो जाएगा। और असत की दशा यह होती है कि जैसे कोई आदमी किसी प्रकार के द्वारा अंधकार को विषय करना चाहे तो कर सकता है क्या, ठीक नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिस समय आप असत को जानने का प्रयास करेंगे तो असत का ज्ञान होगा किससे, जो सत है वो सबसे बहुत गंभीर बात है, बड़ी रहस्य की बात है। असत का ज्ञान सबसे होता है, तो जिस समय आप ये सोचेंगे कि हम असत को देखने कहाँ है हमारे जीवन में असत, उसी समय सबसे एकता पहले हो जाएगी और जब सबसे एकता हो जाएगी तो असत को देखने चलेंगे तो यही दशा हो जाएगी महाराज कि जैसे सूर्य कहे कमला अंधकार को देखें कहता है, जैसे कि कल्पना करो कि सूर्य कहे हम अंधकार को देखें कहता है तो सूर्य कभी अंधकार को देख ही नहीं सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि असत को जानने की उत्कट जिज्ञासा मात्र से, असत को जानने की उत्कट जिज्ञासा मात्र से असत आपको भूल नहीं दिखाएगा, आपके जीवन में नहीं रहेगा और जब असत आपके जीवन में नहीं रहेगा तो जो सत नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है उसमें आपकी अगाध प्रियता होगी। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है, अगाहता का नाम भक्ति है, और अकत न रहे इसी का नाम भक्ति है। और वो युक्ति नहीं, जीवन में से अकत निकल गया, बंधन निकल गया है? और वही जब बंधन निकल गया तो सबसे अगाधता हो गई थी, अपने आप हो जाती है। क्यों? जिसने अकत में ममता में जो शक्ति व्यय होती थी ना, जो शक्ति असत ममता में व्यय होती थी, असत के नाश हो गई, वही शक्ति सत की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात समस्त आसक्तियां अगाध प्रियता में बदल जाती है, समस्त आसक्तियां अगाध प्रियता में बदल जाती है। इस दृष्टि से हम सब को अगाध प्रियता प्राप्त हो सकती है। और ये आप सभी जानवर है कि प्रियता में रस से प्रियता में एकमात्र रस है। और किसे कहते भैया, जिससे कभी तृप्ति न हो और जिससे कभी अंति न हो और जिसकी कभी पूर्ति न हो। अगर पूर्ति हो गई तो रस कैसा, और तृप्ति हो गई तो रस कैसा, और अंति हो गई तो रस कैसा। अब कल्पना करो कि किसी को ऐसा रस मिल जाए कि जिससे न तृप्ति होती है, न अंति होती है, न पूर्ति होती है, न उसकी निवृत्ति होती है, रखा कोई बारह पार लगा सकता है क्या? तो इसकी सीमा कर सकता है क्या? तो इसकी नाप तोड़ कर सकता है क्या? कदा नहीं कर सकता। इसलिए भाई ये मानव जीवन उसी रस की प्राप्ति के लिए मिला है, और उस रस की प्राप्ति प्रत्येक भाई को हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? इसलिए क्यों हो सकती है कि उसके लिए किसी वस्तु विशेष की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा नहीं है। तो किस बात की अपेक्षा है कि भाई उसकी आवश्यकता अनुभव करें, उसकी जरूरत महसूस करें, उस रस की हम जरूरत महसूस करें, हम तो रस हो सकता है। आप देखेंगे कि इससे ज्यादा सहज और इससे ज्यादा सुगम और इससे ज्यादा आसान क्या होगा कि जिसकी जरूरत महसूस करने से ही प्राप्ति होती है। संसार में भी अनुभव देखने में आता है, एक आदमी किसी बात की कामना करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, फिर भी कामना पूरी हो ना हो, किंतु अगाध अनंत रस के संबंध में अनंत का ऐसा मंडल में विधान है, ऐसा मंडल में विधान है कि जहां आपने उस अनंत रस की आवश्यकता अनुभव की, आपको रस अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आवश्यकता का स्वभाव क्या है? आवश्यकता अनेक कामनाओं को स्वतः खा लेती है, आवश्यकता नहीं है। जब आप उसकी जरूरत को महसूस करते हैं तब और नहीं रहते, ये नहीं है। इसलिए भाई उस अनंत रस की हम आवश्यकता अनुभव करें, जब हम उसकी आवश्यकता अनुभव करेंगे तभी कामनाएं स्वतः नाश हो जाएंगे। कामनाओं के नाश में ही परम शांति। देखिए निष्कामता से उदित, निष्कामता से उदित परम शांति, और बोले अखंडता से प्राप्त स्वाधीनता, और ये आत्मीयता से जागृत अगाधता ही मानवता है। और ये मानवता हरेक भय में मौजूद है। उसको विकसित करना है, उसकी खोज करना है, उसको कहीं बाहर से लाना नहीं है, आप में मौजूद है। और उसके विकसित करने का उपाय है एकमात्र सत्संग। वो सत्संग कई प्रकार से होता है, आज मैं केवल एक प्रकार की चिंता निवेदन करूंगा। वो सत्संग होता है शांत होने का। मानव सेवा संघ की भाषा में उसका नाम मूक सत्संग है। शांत होने का अर्थ क्या है? कृपा सुन शांत होने का अर्थ नहीं है हमने ये संकल्प कर लिया हम नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं। भूलने की रुचि नहीं, देखने की रुचि नहीं, सुनने की रुचि नहीं है, रोकने की रुचि नहीं। बोले क्यों? कि भाई जैसा बोलना चाहिए था बोल दिया, जैसा जैसे देखना चाहिए था देख लिया, जैसे जितना सोचना चाहिए था सोच लिया। सही काम करने से करने की युक्ति है, और जब करने की युक्ति का नाश होता है तब अपने आप शांत की अभिव्यक्ति होती है, शांत का प्रादुर्भाव होता है, और जब शांत का प्रादुर्भाव होता है तब जो नित्य प्राप्त सत्य है, सत्य को कहते हैं भाई, जो पहले भी था अब भी है आज भी है, जो है उसको सब कहते हैं। और आप जानते हैं जो है उससे देश की दूरी नहीं होती, उससे काल की दूरी नहीं होती, और जिससे देश काल की दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति के लिए स्वयं अपेक्षित नहीं होता। आप तक मानिए श्रम की आवश्यकता किसकी प्राप्ति की होती है, जिससे देश और काल की दूरी हो, तो सबसे देश और काल की दूरी नहीं है, इसलिए श्रम रहित होते ही सबका कर्म होता है। अब जब सबका कर्म हो तब सबसे पहले दुख निवर्ति दुख ना सकता, दुख नहीं रहता, सबका कर्म होते ही दुख नहीं रहता, इस दुख न रहने मात्र में ही आप कहीं संतुष्ट मत हो जाए, अर्थात शांत को सुरक्षित रहने देना और उसमें रमण मत करना। जब आप शांत में रमण नहीं करेंगे तब अपने आप उसी शांत से अखंडता हो जाएगी, ये अपने आप हो जाएगी। जिस समय शांत से अखंडता हो जाती है उसी समय देह का अभिमान बढ़ जाता है, आप चाहो तो बल जाए न चाहो तो बल जाए, शांत से अखंड हुए देह का अभिमान गलत, और देह का अभिमान गलते ही अपने आप बिना चाहे निर्वासना आ जाती है, और निर्वासना आते ही पराधीनता स्वाधीनता में जड़ता चेतना में विलीन हो जाती है, और जब जड़ता चेतना में विलीन हो जाती है तब अपने आप जो है उसमें प्रियता जागृत होती है। उसे भले ही भौतिकवादियों ने वित्त प्रेम कहा, उसे यही अध्यात्मवादियों ने आत्मरति कहा, उसे यही ईश्वरवादियों ने गुरु प्रेम कहा, किंतु वो प्रेम जागृत हो जाता है, जिसके जागृत होते ही जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, निरसता नहीं रहती, अभाव नहीं रहता, निरसता नहीं रहती, अर्थात पूर्णता और नित्य नवरति अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तव में इस दृष्टि से हम और आप सभी शांत होकर सत्ता कर्म कर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शांत के लिए हम कौन सा समय निश्चित करें, सोने से पहले, सोने के बाद, प्रत्येक कार्य के आरंभ में, प्रत्येक कार्य के अंत में शांत का संपादन करें, और उसके करने के लिए हम अपने होने करने वाली प्रवृत्तियों पर सजगता से दृष्टि रखें कि हमसे कोई ऐसी बात न हो जाए जो हमें नहीं करना चाहिए था, बस इसी से आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग की प्राप्ति होते ही जीवन सुरक्षित हो जाएगा, ये मेरी बात हो जाती है।
अब हम लोग मेरे मित्र उपस्थित हैं, आप तथा भाई और बहन, परम शांत अखंड और अगाध प्रियता